नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में वर्ल्ड सिकल सेल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपने नेशनल टारगेट साल 2047 से बहुत पहले सिकल सेल बीमारी को खत्म कर देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ले लद्दाख में इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रूपये के इंसेंटिव बांटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि देशभर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन अभियान ने सिर्फ 3 महीनों में लगभग 50 लाख डोज लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन चैनल लॉन्च किया है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में एफआईएच वुमेन्स नेशंस कप में उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और पुल ए में टॉप कर रहा। फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको ने ग्वाडलहारा स्टेडियम में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। मेक्सिको आज नॉकआउट राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश बन जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इनमें एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर, खनन प्रभावित गांवों के लिए विशाल एकीकृत ग्रामीण पाइपलाइन, जल आपूर्ति परियोजना, ब्रह्मा कुमारीज का मातृ शक्ति भवन और एक विशेष सर्किट हाउस शामिल है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बेतवेल स्थित आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी जीवन शैली प्रकृति तथा आध्यात्मिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसके बाद राष्ट्रपति ने खांडवा जिले के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना की। यात्रा के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे 22 जून को कुना राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहरे तथा हो जहरे के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तरकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत देशभर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यह पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। वे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राधाकृष्णन 21 जून को लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में युवा, सशस्त्र बलों के जवान और विभिन्न संगठनों के सदस्य योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के संदेश को बढ़ावा देने के लिए भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारी वाले लघु उद्यम है। डॉ मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर में गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि एनएएफआईएस की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल के एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी को पूर्ण परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 69 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के पूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802 7, फिर से सुनिए 9178279802 7 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मैक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली की आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।